ओम शांति। प्रश्नों से पार। क्वेश्चन नंबर 97। मेरे रिलेशन में एक अंकल बिना किसी गुनाह के पिछले 45 डेज से जेल में है। किसी ने उनके साथ फ्रॉड करके उनको एक जमीन बेच दी जिसके सारे पेपर्स नकली थे, परंतु इस मामले में जेल अंकल को हो गई। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? कोई योग अभ्यास जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाए? क्या किया जाए? एक सबूत एकत्रित करें। प्रशासन अपना काम करेगा, और क्या करे? बार बार विजुलाइज करे कि वो बाहर आ रहे। सबसे पहले तो असत्य जो है, झूठ जो है, वो कागज की नाव की तरह है, डूबेगा। सत्य पर विश्वास। असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा डूबेगी। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। हमारा सत्य पर कितना विश्वास है? जहां सत्य पर विश्वास है वहां पर स्वतः ही एक दिन न्याय होगा। और संसार कोई नहीं है हमारा न्याय करने वाला। पहली बात तो संसार के नियम कानून वो एक तरफ है, परंतु जिस व्यक्ति को ये पता है मैं सत्य हूं, उसे फिर संसार कुछ भी कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली बात है सत्य पर विश्वास, सत्य पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। जो हो रहा है सत्य है, जो बेगुनाह है, बेकसूर है, वो भी कारागार में है। प्रश्न है वो क्यों है वहां? हो सकता है इस जन्म की कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, परंतु एक गहरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ चल रहा है। एक साधु को जेल हो गई तो झूठे आरोप लगा दिए उनके ऊपर, झूठ की दुनिया है। तो साधु महाराज ने जेल में ही सत्संग चालू कर दिया और कई सारे कैदियों का कल्याण हो गया। अब उनका कल्याण करने तो जाना ही था, कितनों का जीवन वहां बैठकर ही परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले सत्य पर निश्चय, सत्य पर विश्वास कि जो हो रहा है सत्य है। अपनी निर्दोषिता पर विश्वास, क्योंकि संसार में तो न्याय है, न्याय व्यवस्था बनी हुई है और ये हम नहीं कह सकते कि उसमें हमेशा न्याय ही होगा। उसमें भी बिक रहा है, गवाह बिक रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हो रही है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, योग का प्रयोग कौन सा करूं? ये प्रश्न है। तो क्या कहेंगे? जिन्होंने भेजा उनके लिए योग, पहले तो थोड़ी सी विहंगम दृष्टि से इसको समझना है, बर्ड आई व्यू से। ये जो हो रहा है कहां से हुआ, कैसे चालू हुआ, कौन कौन लोग इसमें थे और क्यों ये हुआ? जरूर जिन्होंने ये किया उनके मन में कौन से भाव होंगे? नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। जिन्होंने फंसाया, ऐसे थोड़ी ना कोई फंसाता है कोई, जरूर इसने भी कुछ किया होगा उनके साथ, उसके परिणाम स्वरूप उसका प्रतिकार, उसका प्रतिशोध उन्होंने लिया और इस व्यक्ति को यहां पर घसीटा। तो उनके मन में कितनी घृणा, कितना नफरत, नहीं तो कोई ऐसा क्यों करेगा? जालसाजी। जो जिसने भी किया या जितने भी लोग होंगे, सबसे पहले तो उन आत्माओं को प्रेम की किरणें देनी है, क्षमा मांगनी है मनसा से, उन आत्माओं में जो घृणा भरी है वो थोड़ी तो कम हो जाए, ये एक काम करना है। फिर उसके बाद ये जो व्यक्ति स्वयं है वो दुखी ना हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। अब ये भी एक प्रश्न है वेतर, ये लोग ज्ञान में है या नहीं है, चाहे ज्ञान में हो या ना हो, परंतु सत्य पर विश्वास हो कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा, क्योंकि ये मनुष्यों की अदालत है, एक दूसरी भी अदालत है, वहां पर न्याय होगा, अगर यहां नहीं तो। योग के प्रयोग में अभी दो लोग हैं, एक तो ये और वो उसके अंकल, क्योंकि ये पूछ रहे योग का क्या अभ्यास करे, इसका मतलब ये ज्ञान में है। वो जो अंकल का पता नहीं, अगर है वो भी तो वो खुद भी अभ्यास करे, और वो जो समय है उस समय को सुखदाई बना दे अब, क्योंकि बहुत सारे महान आत्माएं जब जब जेल गई है अच्छे काम, वहां पर बड़े बड़े साहित्य का निर्माण किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बैठ के लिखी पूरी की पूरी किताब, भारत एक खोज जिस पर बाद में सीरियल बना, वो कहां बैठ के लिखा, जेल में बैठ के लिखा। वो गीता प्रवचन है विनोबा भावे, वो सारे प्रवचन उन्होंने जेल में बैठ के दिए, तो जेल में कई लोगों ने बहुत सारी क्रांति हुई। अरविंद महर्षि, सारी जो क्रांति हुई वो कहां हुई, जेल में हुई, वो जेल में चले गए थे, निकले बाहर तो बैराग आ गया, फिर इनकलाब और ये सब लड़ाई से, और फिर तो सीधा अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। तो जो जो जेल में जाता है वहां बैठ के उसको अपने साधना का पीरियड बना दो, जब तक न्याय होगा नहीं होगा तब तक अलग बात है, वो जब तक नहीं होगा तब तक समय सफल करो, हमारी ब्राह्मणों की भाषा में वहां बैठ के योग का चार्ट बढ़ाओ, वहां बैठ के किताबें पढ़ो, किताबें दी जाती है और वहां पर उनको बहुत सारे काम भी कराए जाते हैं उनसे, तो सब करो जब तक छूटते नहीं तब तक, जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता है तब तक। जो व्यक्ति जिस तरीके का व्यक्ति जेल में जाता है वो वहां वो करता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक मैथमेटिशियन थे, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, मैथमेटिशियन गणितज्ञ, तो जब छूट के आए तो फिर पूछा गया उनको सभा में, अपना अनुभव बताओ जेल का, तो उन्होंने कहा जेल में सब ठीक थी पर वो जो कोठरी थी उसके जो कोने थे एंगल वो ठीक डिग्री के नहीं थे वो जितने होने चाहिए वो ठीक नहीं थे, बाकी तो कुछ पता नहीं मुझे पर वो एक गड़बड़ था वहां पे जितना कोने होने चाहिए उसके वो ठीक नहीं थे, तो व्यक्ति वही देखता है जो वो है। अध्यात्मवादी होगा तो उसके लिए तो खुशी होगी, देखो एकांत तो मिल गया, मौन मिल गया, वो अपनी साधना में लग जाएगा। कोई चोर होगा तो वो दूसरे चोरों को, दूसरे चोर उसको मिलेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, अपने कैसे वहां से निकले उसका कोई युक्ति करेगा, रचेगा, कुछ प्लानिंग बनाएगा कैसे यहां से बाहर निकले। एक व्यक्ति था जिसको ये भ्रम हो गया था कि मैं पैगंबर हूं, खुदा का मैं पैगंबर हूं, इतनी बड़ी बात, जबकि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है, उसके बाद कोई पैगंबर है ही नहीं, उसने कहा मैं हूं मोहम्मद के बाद, मुझे भेजा है खुदा ने और मैं ही पैगंबर हूं, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया ताकि इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, क्योंकि ये कुफ्र है, ये कोई साधारण गुनाह नहीं है अपने आप को अल्लाह खुदा कहना है, पैगंबर कहना, जबकि कहा हुआ है वही अंतिम है, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं है, लास्ट द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो कहता है मैं पैगंबर, उसको अंदर डाल दिया। तो दस दिन के बाद उसको मिलने आए कि अब ठीक हुआ कि नहीं, तो उसने कहा लिखा हुआ है कि पैगंबरों को तो बहुत सहन करना पड़ता है, ये तो और ही प्रूफ हो गया अभी कि मैं तो और ही सहन कर रहा हूं, और इससे तो ये पूरा प्रमाणित हो रहा है कि मैं पैगंबर ही हूं और मुझे अल्लाह ने भेजा है। पीछे से एक दूसरा पागल था उसी जेल में, वो चिल्लाया कि ये पैगंबर नहीं है। तो उन्होंने पूछा तुम कैसे कह सकते हो, उसने कहा मैं खुदा हूं क्योंकि मैंने मोहम्मद के बाद किसी को भेजा ही नहीं। वो भी एडमिट था वहां पर। एक तो ये एडमिट हुआ, एक वो भी एडमिट हुआ, वो पहले से एडमिट था उसके 6 महीने पहले से खुदा। वो कहता है मैंने किसी को ही नहीं भेजा। तो जेल का जो पीरियड है साधना का पीरियड बना दो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या करेंगे, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते वहां पे, तो क्या करेंगे, दुखी हो जाए, रोते रहे वहां पे जेल में बैठ के, कुटते रहे कुटते रहे, प्रशासन शासन व्यक्तियों को दोषी ठहराते रहे, क्या करे। तो एक्सेप्टेंस जो भी है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो चालू रहे, भले एक तरफ स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने की, परंतु साथ साथ ये भी चालू रहे। और रही योग के प्रयोग की बात, तो वो खुद ही देखे कि वो आत्माएं कैसी कैसी उनकी बुद्धि परिवर्तन हो रही है। वो साउथ इंडिया में रामदास करके एक संत हुए साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र वाले नहीं साउथ इंडिया के, वो शिवाजी वाले नहीं साउथ इंडिया के, तो उनको भी तो जेल हो गई थी, और क्योंकि उनको जो भी धन राशि दी गई थी उन्होंने वो राम के मंदिर में लगा दी, क्योंकि वो राम भक्त थे और वो दे नहीं पाए, तो वो खलीफा जो भी था उस समय उसने उसको डाल दिया। वो अभी भी है वो किला वहां पे, वो किला कौन सा है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जहां पर उसका सब कुछ बना हुआ है, जहां पर कैद था वो, मैंगलोर में या फिर हैदराबाद में, हैदराबाद शायद, हैदराबाद। तो वहां पर फिर वो जेल में था और अपनी प्रार्थना में मगन था, दिखाया है उसमें राम और लक्ष्मण रूप धारण करके आते हैं खलीफा के पास, सारी धन राशि दे देते और चले जाते। तो वो कहता है उसको छोड़ा जाता है, वो कहता है वो दो लोग आए थे तुमको छोड़ के चले गए, पैसे उन्होंने दे दिए, चुप तू कर दिया, अब तुम जा सकते हो। वो कहते कौन, मेरा तो कोई है ही नहीं। वो कहते दो लोग आए थे, तब उसको समझ में आता है अरे ये तो राम लक्ष्मण आए थे। ऐसी कहानी है एक रामदास की। तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, किसी ने किसी की बुद्धि में आएगा और व्यक्ति छूट जाएगा वहां से, किसी का षड्यंत्र हो सकता है वो, जिसके कारण वो फंस गया है छूट जाएगा। वो तो दूसरी बातें है फिर अभी ड्रामा की कि वहां कुछ अनिष्ट होने वाला था, उसको बचाने के लिए जैसे वो कहानी में हम बताते हैं उंगली कट गई थी, तो आदिवासियों के साथ वो अकबर के साथ बीरबल गया ही नहीं तो बच गया, तो वैसे ये भी बच गया। तो ये पहला। दूसरा प्रश्न है क्या शादी करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। यदि मैं शादी नहीं करना चाहती और मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहे तो मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। मैं अपने आप को आध्यात्मिक राह पर चलाना चाहती हूं, बहुत सेवाएं करनी चाहती हूं, प्लीज इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। क्या कहे शादी का क्या करना है। आध्यात्मिक राह पर चलना चाहती है, इच्छा है आध्यात्मिक राह पर चलूं, बहुत सेवाएं करूं, करूं ना करूं, जिसे एक मार्ग, एक तो ये कि जिसे आध्यात्मिक राह पर चलना है वो इस बंधनों में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बंधन है, इसमें नए रिश्ते हैं, नए संबंध है, इसमें फ्रेश बॉन्डेजेस है, यहां हम मार्ग पर निकल रहे हैं सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए, तो वो उस मार्ग में तो जाना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। कोई अगर कहे मैं उसमें भी जाऊं और इसमें भी जाऊं क्या करूं, अगर ये कंफ्यूजन है कि ये हीरा है ये पत्थर में क्या लूं, कोई अगर ये पूछता है इसका मतलब उसने हीरे का महत्व समझा ही नहीं है। अगर कोई ये पूछता है ये हीरा है और ये पत्थर है मैं लूं क्या, आप बताओ मुझे मार्गदर्शन करो, उसको क्या मार्गदर्शन करे, उसको समझा ही नहीं है ये हीरा है, खाली कह रहा है ये आध्यात्मिक मार्ग है ये संसार का मार्ग है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, उसने समझा ही नहीं है ये मार्ग क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है। विवाह जबरदस्त बंधन है, टेरिबल बॉन्डेज, क्योंकि एक बार उसमें बंध गए कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, और उसमें इतने भयंकर बंधन है, बहुत भयंकर। और एक चीज जो बताई जाती है, एक तरफ मां एक तरफ बीवी, जो व्यक्ति दो स्त्रियों के बीच में उसका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा बहुत कम संभावना है क्योंकि दो स्त्रियां जब एक साथ आती है तो बहुत कुछ होता है तो ये जो कॉम्बिनेशन है डेंजरस कॉम्बिनेशन है, तो ये तो अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। कोई सोचते हैं हाँ सब सब ठीक है मैं ये करते हुए भी कर सकता हूं तो भले जाए और करे, परंतु आध्यात्मिक मार्ग अकेले का मार्ग है, वो किसी को साथ में लेके चलना, अर्थात जैसे वो खेल होता है ना बोरी में दो पैर बांधो और भागो, वो वही है, भागो गिरेंगे। यहां तो जो कुमार है जो ब्रह्मचारी है जो कुमारी है जो अनमैरिड है अविवाहित है उनको चलना भी कितना मुश्किल है इस मार्ग पर, और ये सोच रहे हैं मैं किसी और को लूं और उसका भी कल्याण करूं, ना तो उसका कल्याण होगा ना तो तुम्हारा कल्याण होगा, गिरना है उसमें। जबरदस्त बंधन है वो एक, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें निभानी पड़ती है ना चाहते हुए भी, सब कुछ होगा उसमें, नई जिम्मेवारी आएगी, ये आएगा वो आएगा ये आएगा वो आएगा। पहले बिंदास थे, अकेला कहीं पे घूमता है व्यक्ति फिर बाद में सोचना पड़ता है उसको, हर बात में सोचना पड़ता है, हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है, कहीं जाना है तो सोचना पड़ता है जाऊं कि नहीं जाऊं, इसको लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं। एक मुरली में था ना कि लेके जाना पड़ता है कुमारों से मुलाकात में, बाबा ने कहा था ना, तो वो सब चीजों से तुम छूट गए तो बस फिर तो संशय तो ऐसा चीज है कि उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इलाज उसका कोई इलाज, संशय का कोई इलाज है क्या तो ये व्यक्तिगत डिसीजन है, परंतु जिसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है उसके लिए ये सब बंधन व्यर्थ है, नरक है सब ये, इसमें जाना ही नहीं है उसको, क्योंकि इसमें फंसना है, जाल है जाल, शादी बर्बादी मुरलियों में आया है सीधा महावाक्य बाबा का, तो इसमें जाना नहीं है। अगला प्रश्न है, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन करने से सिर्फ बैड कर्माज ही क्यों नष्ट होते हैं, अगर बुरे कर्म खत्म होते हैं तो जरूर अच्छे भी खत्म होते होंगे, योग से पुण्य कर्मों का नाश होता होगा, तो क्या ऐसा क्या जादू है तुम्हारे योग में जो सिर्फ पाप कर्म ही खत्म होते और पुण्य कर्म खत्म नहीं होते, क्योंकि खत्म होना चाहिए तो दोनों होना चाहिए, और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता, प्लीज मुझे गाइड करे मेडिटेशन से केवल बैड कर्म क्यों खत्म होते, पुण्य कर्म क्यों नहीं खत्म होते, क्या कहेंगे, क्या उत्तर है? नहीं, प्रश्न है कि अच्छे कर्मों को भस्म करता है क्या योग, कर्म को भस्म करता है, ऐसा कहा है कि तुम कहते हो विकर्म भस्म होते, तो पुण्य कर्म भी भस्म होते हैं क्या योग से? ये प्रश्न है मेडिटेशन से, क्योंकि सबसे मेडिटेशन इट्सेल्फ पुण्य कर्म है, पॉजिटिव मेडिटेशन इट्सेल्फ पुण्य कर्म है, वो स्वयं में ही पुण्य कर्म है, योग ही एक पुण्य है, तो पुण्य पुण्य को थोड़ी भस्म करेगा, पुण्य पुण्य को नहीं भस्म करेगा। एक तो ये, और पुण्य कर्मों में निखार आएगा, पुण्य कर्म और बढ़ेंगे, वो खुद ही एक पुण्य कर्म है, तो इसमें पुण्य पुण्य कर्म को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। और योग अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, योग अर्थात हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस की जा रहे तरफ जा रहे, तो वहां पर जो भी बैड कर्माज आए कहां से है? बॉडी कॉन्शियसनेस से। तो गुड और गुड कर्माज जो है वो सोल कॉन्शियसनेस में किए जाते हैं, तो सोल कॉन्शियसनेस में गुड कर्मा नष्ट नहीं होंगे, वो तो और बढ़ेंगे और अच्छे होंगे, तो इसमें बैड कर्माज ही नष्ट होंगे। और क्या कह सकते हैं? तो वो एक एनर्जी का एक्सचेंज है, तो उससे बैड कर्म का क्या होगा? बैड कर्म चले जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव एनर्जी जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और क्या क्या? साधारण कर्म को और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस तरह के जो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, इस तरह के, उनको पहले ज्ञान की गहराई में लेके जाना है, तो फिर ये इस तरह के प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। इनको कंप्लीट जब तक अनुभव नहीं कराया जाएगा, सभी प्रश्नों के सभी उत्तर नहीं दिए जा सकते, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, एक्चुअली ये जो प्रश्न है इनके उत्तर नहीं है, ये ऐसा कुछ किया जाए कि वो प्रश्न ही समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर थोड़ी होते हैं, प्रश्न ही खत्म हो जाए जड़ से, क्योंकि जो उत्तर हम यहां देंगे उस उत्तर से 100 और प्रश्न नए खड़े होंगे, और जो उत्तर, जो 100 उत्तर है, जो 100 प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न में और एक उत्तर देंगे, उसमें 1000 प्रश्न निकलेंगे। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी है ये बहुत ही संदिग्ध है, डाउटफुल है, मुझे बहुत प्रश्न पूछने हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक शर्त है, तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा 1 साल मौन, तो मैं आपके सब उत्तर दूंगा, ये एक ही शर्त है। पीछे से एक सन्यासी खड़ा रहता है, बोलता है बिल्कुल मत मानना, मैं भी ऐसे आया था, इन्होंने मुझे रख दिया 1 साल के लिए, आज 40 साल हो रहे प्रश्न तो मेरे खत्म ही हो गए, क्या थे? तुम ये गलती मत करना, जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि तुम इनके साथ अगर रहे और मौन रहे तो 1 साल के बाद तुम्हारा कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, प्रश्न ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर भी रहता है। और 1 साल के बाद महात्मा बुद्ध पूछते, मैं अब सारे प्रश्न उत्तर देने को राजी हूं, पूछो। बोलते क्या पूछू, अब है ही नहीं, प्रश्न ही खत्म हो गए, प्रश्न भूल जाते हैं। तो कोई इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इनके कोई उत्तर नहीं होते हैं, इनका कितना भी उत्तर दो, कितना भी सोच सोच के उत्तर दो, इनको कभी संतुष्टि होगी क्या? क्योंकि ये तो टाल टालिया है, आत्मा यहां अनुभव एक बार कर ले, उसे कुछ प्रश्न की जवाब, बाबा कहते हैं कई मुरलियों में, केवल पहला ये समझाओ बाप पर, बाप कौन है, पहले परमात्मा का परिचय दो, दो बाप का परिचय दो, ये सृष्टि चक्र ये सब बाद में, भगवान को मान लिया तो उसने कहा हुआ सब वो मान जाएगा, जिसका इस इधर निश्चय हो गया उसको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये उसने कहा, उसने जो कहा ये राइट है, खत्म। अब फिर डायनासोर कहां से आए और 5000 साल का ही क्यों है, फिर कार्बन डेटिंग ने ऐसा क्यों कहा, बहुत सारे प्रश्न है ऐसे, तो ये सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है खत्म, डिवाइन रेवलेशन है, 5000 साल कहां से आया, 6000 साल क्यों नहीं है, 5500 क्यों नहीं है, ऐसे तो 1000 निकल सकती है, ब्रह्मा के तन में क्यों आया, क्यों दूसरे नहीं थे कि अवेलेबल बॉडीज, वो हमने एक क्लास में सुना था, कौन सी दादी थी, मनोरिंद्र थी दादी, तो उसमें आया था। लोग पूछते हैं ब्रह्मा तन में क्यों आया, दादी पूछते क्या तुम्हारे तन में आएगा क्या शक्ल देखिए किसी के भी तन में आए वो प्रश्न फिर से खड़ा ही होगा। चलो वो ब्रह्मा को हटा दिया, किसी और के तन में आया, तो वहां इसके तन में क्यों आया, प्रश्न तो हमेशा ही रहेगा। जानवरों का क्या होगा, जानवरों का परम पिता कौन है, जानवरों का परम जानवरों की आत्मा कहां जाती है, जानवर कितने जन्म लेते हैं, जानवर का साइकिल कितने साल का है, ब्राह्मणों का जो जानवरों का जो परम धाम है वो कहां है बताओ, उसमें भी शेर का परम धाम कहां है, फिर बकरी का परम धाम कहां है, क्योंकि अलग अलग आत्माएं हैं तो अलग अलग होगा ना, तो बता देना ये हमारा परम धाम, बाजू में इधर दूसरे परम धाम चालू हो रहे छोटे छोटे, ये शेर ये बकरी ये प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं है इनका, तो ये तो पूरा लंबाई चले चालू रहेंगे। परम धाम कितना दूरी पर है किलोमीटर बताओ, वो तो मत, कितना दूरी पर है किलोमीटर प्रूफ करके बताना, ऐसे कुछ भी मत, मैं ऐसे कुछ भी मानने वाला नहीं हूं, पूरा प्रूफ चाहिए मुझे प्रूफ के साथ तो ही मानूंगा। उनको कुछ नहीं, शांति से बैठो, जैसे इन्होंने कहा ना एक साल यहाँ बैठ जाओ बस सारे उत्तर आ जाएंगे, या फिर रोज मुरली में 3 मास के लिए आओ बिना कोई प्रश्न पूछे, बस आके बैठ जाना बस, फिर तुम्हारा 1-3 महीने के बाद में सारे प्रश्नों के उत्तर हम देंगे बैठ के, तब तक तो कुछ नहीं पूछना। तो ये सारी चीजें, वैसे ही ब्रह्मचर्य के हजारों प्रश्न है, इसके लिए डायरेक्ट आए बराबर ब्रह्मचर्य और भोजन, ये दो चीजें कोई भी स्टूडेंट को कभी नहीं बतानी है, वो उनको मुरली से सुनने दो, हम ना सिखाए, हमारा काम है उसको पकड़ के बस मुरली तक पहुंचा देना बस, फिर वो मुरली से डायरेक्ट आते रहेगा, बीच बीच में तीर लगेगा उसको, हम सीधा ही बता देंगे ना, हजार प्रश्न पूछेंगे, ये क्यों वो क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, हाँ फिर भगवान ने बनाया क्यों स्त्री और पुरुष को, ऐसे प्रश्न पूछते ये जानवर बने क्यों है फिर, अगर हम ना खाए तो फिर क्यों बने हैं वो बहुत सारे प्रश्न है उनके, तर्कों की कमी है क्या, ब्रह्मचर्य जैसे मुरलियों में आता है फिर संसार कैसे चलेगा, संसार की वृद्धि कैसे होगी, बड़े मौलिक और बड़े ही तार्किक प्रश्न है उनके पास, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है वो। लास्ट प्रश्न, मैं 6 साल से ज्ञान में हूं पर पिछले कुछ महीनों से मेरा सारा ज्ञान योग व मुरली क्लास में जैसे सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं होता और इसी वजह से मेरा सेंटर जाना भी बंद कर दिया है, पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बाबा के बिना जिंदगी और ही बदतर हो जाएगी, मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं, मैं पहले ही जैसा अपने को कैसे शक्तिशाली बना, क्या करें, इंटरेस्ट खत्म हो गया है ज्ञान योग में, इंटरेस्ट खत्म हो गया, और ये तो कईयों की समस्या है, ज्ञान योग में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो केवल नेमिनाथ जबरदस्ती करना पड़ता है दिखावे के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, बाकी अंदर से कुछ नहीं, अंदर से गया है इंटरेस्ट, पूरा खत्म हो चुका है। हाँ इसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है जरूर, कहीं और इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसलिए तो कम हो रहा है। इधर जूस रखा हुआ है और इधर कुछ अच्छा सा कुछ व्यंजन पकवान, इधर अंकुरित रखे हुए, फॉर एग्जाम्पल इधर कोई तेल मसाले वाली सब्जी रखी है, अभी तक वो अंकुरित खाता था और एक दिन बोलता है कि मेरा अंकुरित में आज इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट मतलब क्या, क्योंकि ध्यान उधर गया है ना, जरूर कुछ और आ गया बीच में, इसलिए तो इधर इंटरेस्ट कम हो गया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कहां इंटरेस्ट गया है, इंटरेस्ट क्यों कम हो गया, ज्ञान में योग में धारणा में सेवा में, कुछ तो कहीं ना कहीं बुद्धि गई है, ज्ञान योग छोड़ के व्यर्थ में गई है, परचिंतन में गई है, गॉसिप्स में गई है, ब्लेमिंग करने में गई है, इसको ब्लेम उसको ब्लेम, पता किसी को कुछ नहीं, ब्लेम बिजनेस चालू है, वो जैसे चाइनीज विस्पर यहां किया था हमने, कितना बड़ा कितना बड़ा लेसन है उसमें। यहां से चार कितनी तीन कहानियां जो भी सुनाई थी, यहां बकरी का वहां क्या बन गया था, बकरा नहीं कुछ बिल्ली और कुत्ता कितना चेंजेस हो गया था। और वो तो देखो यहीं पे बनाई थी ये लोगों ने, श्याम भाई और मंजू बहन ने, यहां के यहां ही। टाइम अभी का था, इमेजिन करो द्वापर से अब तक क्या हुआ वो। जो कहानी एक ने सुनाई वो दूसरे ने दूसरों को क्या सुनाई, 10 मिनट में इतना चेंजेस आ गया पूरा, 10 मिनट में ही कितना चेंजेस, बाप रे। वो एक बार फिर से करेंगे वो वाली, बहुत जबरदस्त जरूरी है वो चाइनीज विस्पर उस वो। और लैंग्वेज अगर बदल गई तो और, क्योंकि लैंग्वेजों के साथ अर्थ बदलते हैं भाषा के। जो नॉर्थ इंडिया में कहानी थी वो साउथ इंडिया में जाके क्या बन गई, वहां शेर था वहां जाके बकरी बन गई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब चेंज। तो कितना सत्य है उन बातों में, यहां किसी को कुछ पता नहीं रहता है, खाली बातें रहती है बस हवा में बातें चल रही है। और जिनको इसमें इंटरेस्ट है, झरमोई झगमोई गॉसिप्स, कौन क्या कह रहा है कौन क्या करता है, पता किसी को कुछ नहीं, बस बोले जा रहे व्यर्थ। तो यहां पे अगर चला गया तो यहां पे फिर ज्ञान योग में इंटरेस्ट आएगा क्या? ज्ञान की पावरफुल स्टेटमेंट, अव्यक्त वाणियां, एक कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है पूरा, वो एक एक लाइन याद करना कितना बुद्धि व्यर्थ से मुक्त चाहिए। क्या क्या स्क्रीन में, हाँ उसके बाद में इमेजिन करो कोई एक सीरियल ही देख रहा है या टीवी देख रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग, चलो फिल्म देख रहा है, एक ब्राह्मण एक फिल्म देख रहा है और फिल्म बहुत अच्छी, 3 घंटे की फिल्म देखी, उसके बाद में उसको लो ये मुरली, अरे 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 मुरली, ना तो उसमें एक्साइटमेंट, ना तो उसमें कुछ गीत संगीत रोमांस वायलेंस कुछ भी नहीं है उसमें, एंटरटेनमेंट ऐसा उसको एकदम नीरस लगेगा उसको। तो क्या है उसमें, वही तो है, बाप आते हैं आते हैं और जाते हैं। अब है ही क्या उसमें, और विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, दिव्य गुण धारण करने तुम्हें सेवा भी करनी है, तुम्हें पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, अब घर वापस जाना है, तुम्हें ये भी करना है तुम्हें वो भी करना है, पैसे आओ घूम के आओ, ये सारी चीजें तो पता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और चला गया है। जहां इंटरेस्ट इंद्रियों में चला, इंद्रियों के दीवाने हैं सारे, इंद्रियों में रसों में बुद्धि गई है तो ये व्यर्थ हो जाएगा। वो इंद्रियों के रस कुछ भी हो सकते हैं, कान के दीवाने, कान के संगीत म्यूजिक, या तो कोई एक भाई उस दिन मिला था, वो डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में, एक डॉक्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे बीकेएस को जिम्नेशियम में जाना चाहिए क्या, मैंने कहा जाओ अच्छा है एक्सरसाइज के लिए, पर वहां पर बॉडी बिल्डर जाके बनने का टारगेट मत रखो, बॉडी बिल्डर ही बनना है तो सारा ध्यान उसी के ऊपर, वो देहभान है फिर। हाँ एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए निरोगी रहने के लिए ठीक है, जिम जाओ या एक्सरसाइज करो प्राणायाम करो योगा करो कुछ भी करो, पर उसको ही सब कुछ सर्वे सर्वा बना देना पूरा, कि अभी मुझे उसमें कंपटीशन में वेट लिफ्टर या कुछ बनना है, उसमें फर्स्ट ही आना है। हाँ वो एक दूसरा, इसी तरह संगीत भी है, संगीत भी एक माया बन जाती है लोगों के लिए, जो गायक है जो लिखने वाले हैं या फिर जो म्यूजिक जानते हैं, वो ये करते करते संसार के गीत गाने लगते हैं। एक लक्ष्य तो होता है बाबा के गीत गाने हैं, पर धीरे धीरे संसार के गीत, संसार के ऑर्केस्ट्रा और उसमें प्रसिद्धि और वो सारा सुर ताल वो सब में ही घुस जाते हैं, वो गई, वो माया हो गई उसके लिए, संगीत ही माया हो गई, कोई भोजन, भोजन ही माया हो गई, इंद्रिय है वो, बस खाओ खाओ खाओ, किधर क्या दिखता है नया, खाओ खाओ खाओ, गंध स्पर्श सभी माया हो गई। तो ज्ञान योग में इंटरेस्ट कम हो गया मतलब कहीं और इंटरेस्ट गया है, एक। दूसरा, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कोई संगठन को ढूंढो कि जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, क्योंकि उस संगठन में जाने के बाद ही हमको थोड़ी प्रेरणा आएगी कि मुझे भी करना है, ये कर सकते मैं भी कर सकता हूं, असंभव नहीं है ये काम हो सकता है। तीसरा, बचपन के दिनों को याद करना, अपने अच्छे दिनों को याद करना, दादियों को मिले, बाबा से मिले, डायमंड हॉल में मिलन मनाया, मधुबन में सेवाएं की, ब्राह्मण परिवार के वो दिन, वो सब याद करना। और नवीनता चाहिए, जब तक नवीनता नहीं, वही 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 योग चालू है, वही 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 ज्ञान, वही वही सेवा है, सब चीजों में नवीनता चाहिए। यहां तो हर दिन नवीनता चाहिए, नहीं तो एक ही चीज करो तो बोर हो जाते। हर दिन नवीनता चाहिए। और हाँ, वो सब पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। लास्ट संडे की मुरली में एक चीज बताई थी ना बाबा ने, ये सारा जो हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, उलझन लग रही है, थकावट आ गई है, गिर गए हैं, बुद्धि भटक रही है, माया के वश हो रहे हैं, ये सारों का एक चीज बाबा ने उसमें बताई थी कि बीती से बीती कर दो। बीती जो हो गया वो हो गया, पास खत्म, फुल स्टॉप, उसका कोई चिंतन नहीं। वो लोग कहते हैं प्रश्न, उनका है वैसे वैसे अर्थात प्रश्न चिन्ह, तुम्हारा है ऐसे ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। लास्ट संडे के, लास्ट संडे की मुरली वो हो गया, का पाठ पूरा हो गया, जो भी होता हो। अभी नई सुबह की नई किरण, उड़ो रे पंछी पार वतन, तो अभी नया चालू करो, सब कुछ नया पुरुषार्थ आज से चालू करेंगे। हाँ, तो संघ को चेंज करना है, फिर थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना है, थोड़े से क्लासेस सुनने हैं, थोड़ा सा टाइम सफल करना है, थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में जाना है, और क्या करेंगे पुरुषार्थ में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। लक्ष्य को याद करो, लक्ष्य क्या था, किस लक्ष्य से चले थे हम, कहां भटक तो नहीं गए। दोनों को, ये वाला और वो वाला, और विजुअलाइज करना नया नया पुरुषार्थी मेरा स्वरूप कैसा होगा, वो जिसका अमृत वेला एकदम पावरफुल हो रहा है, जिसको अमृत वेले में जरा भी नींद नहीं है, जिसकी मुरली चिंतन मनन सब हो रहा है, जिसका दिनचर्या भी एक्यूरेट है, जहां पर कहीं व्यर्थ का ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो भी दिनचर्या में कम ज्यादा होता है उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे चित्त पर ना पड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभाव ना पड़े, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि बहुत हलचल इतनी है दिनचर्या में, हजार चीजें हो रही है एक ही व्यक्ति के साथ, हजार चीजें, नई नई बातें हो रही है, परंतु वो हल्के में लेना। हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कह दिया, अब क्या कर सकते, मुंह पट्टी थोड़ी ना बांध सकते, सिलाई कर सकते हैं कि मुंह की स्टिचेस किसी की, कुछ नहीं कर सकते, जिसने जो किया करने दो। हल्का लेना, लाइट, कह दिया कह दिया, जैसे दोस्त लोग होते हैं ना आपस में हंसी मजाक करते हैं तो बुरा लगता है क्या उनको, ये बुरा लगना सबसे बड़ी बीमारी है, सेंसिटिव नेचर, ज्ञान योग में जहर है बुरा लगना, फीलिंग देवी बन जाना सबसे भयंकर बीमारी है, क्योंकि वो सीधा गिरा देती है मूड को, सीधा मूड मूड क्रैश हो जाता है पूरा उसमें, फ्लाइट की जरा एरोप्लेन की तरह। वो ठीक है, इसने बहुत बुरा कह दिया कह दिया कह दिया, अब क्या, जरूरी थोड़ी ना हमको बुरा ही लगना चाहिए, आगे बढ़ो, ये तो होते ही रहता है ना लाइफ, संसार में भी तो लोग कैसे हंसी मजाक से रहते हैं, लाइफ है इसमें होगा। तो ये एक चीज, और क्या करेंगे आशीष भाई, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ज्ञान योग में इंटरेस्ट बढ़ाना है, सेवा में इंटरेस्ट बढ़ाना है, मधुबन में आ जाए सेवा देने, पर वो छुट्टी नहीं मिलती उन लोगों को और इधर भी देना चाहिए थोड़ा। दूसरा एक चीज, कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं जो अनडायग्नोस्ड है, थायराइड व्यूराइड, कितनी बहने आती है थायराइड 100 बहुत ज्यादा और चेक ही नहीं किया है, एक तो वो, दूसरा कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन तो नहीं चल रहा है, वास्तव में कोई डिप्रेशन चल रहा है, पेशेंट डिप्रेशन में है और यहां वहां ज्ञानियों के पास सलाह लेते हुए घूम रहे, कोई उसको समान, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कह रहा है अमृत वेला करो, कोई कहता है कुछ, अरे बाबा शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसको जब तक डिप्रेशन की गोली नहीं चालू होगी वो निकलेगा नहीं बाहर, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया है डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज। कितने लोग आते हैं ओपीडी में जो कहते हैं ऐसा लगता है जीवन इंटरेस्ट खत्म हो गया, 3 बार इसके पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूं, अभी भी सोच रहा है कैसे करूं, यहां काटना वहां काटना चालू रहता है, इतना उदासी है जीवन में, पूरी निराश्य छा चुका है, विराट निराशा तो पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, एडमिट जरूरत पड़ी तो एडमिशन भी लगती है ऐसे पेशेंट, वो कारण होगा कि इंटरेस्ट खत्म हो गया और हम सोच रहे हैं ज्ञान योग के मार्ग उसको बता रहे, ये काम नहीं करेगा, वो तो देखना पड़ेगा क्या है। ओम शांति।